इंस्टॉलमेंट्स हैं जो हर 3 महीने बाद मिलता है या जैसे ही मिलता है, और जब एक ट्रांच मिलने का वक्त आता है तो वो रिव्यू करते हैं IMF वाले कि जो हमारी शरायत थी वो पूरी हुई कि नहीं, और अगर नहीं पूरी हुई होती है तो वो फिर ट्रांच रिलीज नहीं करते। लेकिन ये जो पीरियड था 2013 और 2018 के दरमियान, इन्होंने शायद 12 या 13 दफा हमें वेवर दे दिया, यानी हमने शरायत नहीं पूरी की, उसके बावजूद भी उन्होंने कहा चले हम शरायत को नहीं देखते, हम आपको ट्रांस दे देते हैं। उस वक्त भी हम शोर मचा रहे थे कि ये इतनी फराक दिली क्यों है, क्योंकि IMF की तारीख में उनके मिजाज में फराक दिली नहीं है, वो बहुत सख्ती से अपनी कंडीशंस पे अमल करवाते हैं, और ये खदशा था कि ये कोई सियासी कंसेशन हमसे लेंगे। और उस वक्त हम FATF में भी थे और काफी हमें तंग किया FATF में, तो ये उस वक्त खदशा हमने जाहिर किया था कि शायद ये इस तरफ तो नहीं है कि ऐसे मौके पे हमें जानबूझ के ऐसे कॉर्नर पे डाला जा रहा है, इतनी लंबी रस्सी दी जा रही है हमें कि हम टांग दें अपने आप को, और एक वक्त ऐसा मौका आए वो कहेंगे कि अच्छा जी अब आगे जो भी मिलेगा आपको वो उस वक्त मिलेगा जब आप ये सियासी हमारे शरायत जो है वो आप पूरे करें। ये खतरा मैं समझता हूँ अभी भी है, और हमें नहीं पता कि दरवाजे के पीछे क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, किस किस्म की कंसेशन दी जा रही है, किस किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ किए जा रहे हैं कौमी मफाद के साथ, और जो कौमी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी जो है वो कितनी कॉम्प्रोमाइज़ की जा रही है हमें नहीं पता, क्योंकि ये सारी चीज़ें बंद दरवाज़ों में होती है। लेकिन ये हम समझते हैं कि जो भी कंसेशन जो भी फरागदिली अब हमें वो दिखाई जाएगी अमेरिका की तरफ से, वर्ल्ड बैंक, IMF और दूसरे जो इदारे हैं या मुल्क है, वो मुफ्त में नहीं होगी, उसके एवज हमें कुछ देना होगा, और बहुत मेरा ख्याल है कीमती चीज़ें देनी पड़ेगी,
कीमत चुकाना होगी। सर बहुत से लोग चाइना के बारे में बातचीत करते हैं अभी CPAC के बारे में, क्या ये CPAC, क्योंकि ज़ाहिर है इसके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा भी चल रहा है कि हर चीज़ को जो है वो चाइना को बेनिफिट है, हालांकि पाकिस्तान का भी डेफिनेटली बेनिफिट है, मगर मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। और इंडिया ने, अमेरिका ने, सऊदी अरब, इन लोगों ने मिलकर जो एक और कॉरिडोर बनाया जिसमें एयर और समंदर के रास्ते और ज़मीन के रास्ते इन्वॉल्व हैं, यूरोप तक सामान लेके जाना, अगर आप CPAC से कंपेयर करते हैं उसको तो हाउ वुड यू कंपेयर, क्या कहेंगे कि CPAC पाकिस्तान के लिए बेहतर है?
बिल्कुल बेहतर हो सकता है और बहुत ज्यादा बेहतर हो सकता है। देखिए, जब तरबेला और मंगला बनाए गए और उसके साथ 1,00,000 मील के कनाल्स और वाटरवेज बनाए गए, तो वो जमीन जो बिल्कुल बंजर थी, जहाँ घास भी नहीं उगती थी, अब दो फसलें होती है, जहाँ रेत उड़ती थी वहाँ शहर है, बस्तियाँ हैं, तो ये समझ लें कि माशी ज्योग्राफी तब्दील करती इस एक प्रोजेक्ट ने। CPAC का भी यही पोटेंशियल है। CPAC जो है बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान जो है, इसकी माशी ज्योग्राफिया बदल सकता है, लेकिन हर काम को करने के लिए उसको सही तरह से ऑर्गेनाइज करना और इम्प्लीमेंट करना है। CPAC का जो हमें हमारा जो तरीका है चाइना के साथ डील करने का, हम अपने मुफाद के हवाले से कोई चीज़ नहीं रखते टेबल पे, और सारा चाइनीज डिटरमिन करते हैं क्या अग्रीमेंट होगा। ये बात खुफिया थी जो मुझे जब पता चला, मैंने आम की उसको, फिर पार्लियामेंट में सवाल भी पूछा, हासिल प्रेजेंजो ने जवाब दिया, तस्दीक की मेरे सवाल की, वो ये है कि ग्वादर पोर्ट का रेवेन्यू जो है उसका हिस्सा हमारा 9% है, 91% चाइना का है, और मैं आप उस वक्त 2014 से मैं ये पूछ रहा हूँ, आज भी पूछ रहा हूँ कि हमें वो स्टडी फिजिबिलिटी कैलकुलेशन बताए किस बुनियाद पे ये 91.9% सेट किया गया और पाकिस्तान का शेयर सिर्फ 9% क्यों है, और हम चाइना को फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, पता नहीं कितने हजार मजीद भर्तियां की है फौज के अंदर सिर्फ चाइनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ग्वादर से पंजराब तक। तो मेरा एक सवाल ये भी है कि हम ये तो नहीं है कि जो अखराजात है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने पे वो 9% रेवेन्यू से ज्यादा बनता है, फिर तो ये घाटे का सौदा हुआ, ये दुकान बंद हो जानी चाहिए। जो दुकान ज्यादा पैसे ले आमदनी देने के बजाय वो दुकान तो बंद होनी चाहिए, लेकिन इन किसी चीज का सवाल का जवाब नहीं देते हैं, हर चीज खुफिया है। तो अगर आपने इस तरह से मामला चलाने हैं तो फिर फायदा, जिस चीज का बहुत फायदा हो सकता है मुल्क को, वो फायदे से भी हम महरूम हो जाएंगे। और इस वक्त सिपेक का मुझे ऐसे ही लग रहा है कि पाकिस्तान के मफादात के हवाले से कोई ठोस इकदाम नहीं किए गए हैं।
सर, आपका इतना तजुर्बा है, क्या बात है, और 40 साल से आप इस फील्ड में हैं, 1980 के बाद आप आते हैं और आप डेटा बेस बात करते हैं, क्या बात है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ औकात में वो अशखास जो किसी न किसी तरह IMF या अमेरिका के साथ या वेस्ट के साथ उनका ताल्लुक था, वही पाकिस्तान में आए, शौकत अजीज की बात कर लें, हफीज शेख साहब की बात कर लें और जिन लोगों की बात कर लें, पॉलिटिकल ग्राउंड के ऊपर एडवाइजर्स भी लग जाते हैं, आपको क्यों मौका नहीं दिया गया टू सर्व द कंट्री एंड टू वर्क इन एसोसिएशन विद सम डिपार्टमेंट टू ब्रिंग सम पॉजिटिव चेंजेस?
जी, मुझे मौका मिला है, बहुत ब्रीफली मिला है और सिर्फ पीपल्स पार्टी के दौर में मिला है। मैंने BISP डिजाइन किया, मुझे बुला के कहा गया कि ये प्रोग्राम आप बनाएं, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मैंने डिज़ाइन किया। उसके बाद मुझे फिन का नुमाइंदा अपॉइंट किया नेशनल फाइनेंस कमीशन में, हमने एक कामयाब अवार्ड किया 7th NFC जो 2010 में आया। मुझे बाद में एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट फिन का मुकर्रर किया गया, वहाँ मुझे बहुत अच्छा काम करने का मौका मिला, कई चीज़ें हमने की और जो चीज़ मेरे अपने दौर में नहीं हुई वो बाद में हुई, चूँकि वो उसकी उसका पेपर वर्क हो चुका था, तैयारी हो चुकी थी। मैं 3 साल एडवाइजरी कैपेसिटी में था तो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर करके छोड़ी है और वो कुछ अमल भी उस पर हुआ है। तो जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला, बहुत कम अरसे के लिए वो है, लेकिन एक निज़ाम होता है जिस किस्म का, जिस नौयत का वो निज़ाम होता है, जो कैरेक्टर होता है उस निज़ाम का, फिर वो अपनी मर्जी के लोग लेकर आते हैं। वो उनके लिए शौकत अजीज और हफीज शेख और ऐसे लोग ज़्यादा मंजूर है क्योंकि वो उनका एजेंडा परस्यू करते हैं।
स्पाइंग भी करते थे क्या, उन्होंने स्पाइंग भी की होगी कि इस मुल्क में क्या हो रहा है जिन लोगों ने उनको अपॉइंट कराया था?
मेरा ख्याल है इस मुल्क की कोई चीज़ खुफिया नहीं है, तो स्पाइंग करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें तो गूगल पर मिल जाएगी आपको।
अभी जो पाकिस्तान में ज़रात रई मुल्क है और कोर्स अभी जो ज़रात के भी कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं आउटसोर्स किए जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ फरमाएंगे आप?
ये तो इंतहाई ख़तरनाक है, देखिए आप कारखाने भेज दें गैर मुल्कियों को, कोई एयरपोर्ट या कुछ भेज दें, लेकिन ज़रात तो डायरेक्टली आवाम को, इंडिविजुअल फैमिलीज को अफेक्ट करेगा, क्योंकि जो कॉरपोरेट फार्म्स हैं वो जो एग्जिस्टिंग ओनरशिप है छोटी और बड़ी, जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं वो भी बेज़मीन हो जाएंगे, क्योंकि कॉरपोरेट फार्म्स का बड़ा पावर होता है और कॉरपोरेट फार्म के पीछे अगर मुल्क के ताकतवर इदारे हो तो वो उनके सामने फिर कोई नहीं रुक सकता। जो कॉरपोरेट फार्म्स होते हैं वो मार्केट के लिए प्रोड्यूस करते हैं, जो ज़रात है सदियों से 5,000 साल 10,000 साल पहले ज़मीन जो है वो खुराक का ज़रिया होती थी, लोग अपना खुराक का जो बंदोबस्त है वो ज़मीन से करते थे, ज़मीन एक माँ की तरह समझी जाती है, लेकिन जब आप उसको कॉर्पोरेटाइज कर देंगे तो ज़मीन एक अशिया है जो मार्केट मंडी में जिसकी कीमत लगती है, और जो कॉर्पोरेट फार्म लगाएंगे वो चीज़ उसमें से ग्रो करेंगे, वो लगाएंगे जिसकी बैनुल अक्वामी मार्केट पे अच्छी कीमत है, अगर गंदम की अच्छी कीमत नहीं है वो गंदम नहीं ग्रो करेंगे, चाहे वहीं के लोग जो हैं गंदम के बगैर उनको गुजारा करना पड़े, और ये हुआ है। अफ्रीका में कॉरपोरेट फार्मिंग हुई है, वहाँ ऐसे क्रॉप ग्रो किए गए जो अफ्रीकन खुद कभी नहीं खाते, लेकिन जिसके पास वो जमीन थी, जिस मुल्क के पास वो जमीन थी, उन्होंने अपनी जरूरत के लिए वो क्रॉप्स वहां ग्रो किए और फिर एक्सपोर्ट किया अपने मुल्क को। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कंट्री कॉर्पोरेट फार्म्स के, उसमें ये होता है कि पूरा जो आउटपुट का राइट है वो कंपनी का है, जो एग्रीकल्चरल कंपनी है उसके पास, वहां जो मजदूर काम करते हैं उनको भी शायद हक नहीं है कि वो वहां से कुछ ले सके। तो हम न सिर्फ बेजमीन हो जाएंगे, खुराक ग्रो करने का जरिया ही खत्म हो जाएगा, एक जमीन एक मंडी का शिकार हो जाएगा, और लोगों को एक सीवियर फूड सिक्योरिटी होगी। हमारे पास हम और चीजें तो ग्रो कर रहे होंगे, मसलन अभी एक बायोफ्यूल्स का कॉन्सेप्ट है, तो शुगर केन से बायोफ्यूल्स बनाते हैं जिससे गाड़ियां चल सकती है, पेट्रोल बन सकता है। मगर ये उनको पता चला कॉर्पोरेट फार्म को कि बायो शुगर केन की प्राइस इसलिए ज्यादा है कि उससे बायोफ्यूल्स बनते हैं। हमारी फर्ज करें एक चौथाई जमीन जो है गंदम की और कॉटन की सारी जमीन जो है सिर्फ गन्ने उगाने में लग गई, तो वो जो एग्रीकल्चरल कंपनी तो खूब मुनाफा कमाएगी, खुराक कहाँ से आएगा हमारे लिए।
सही। अच्छा, मेरा सर यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन जो आता है कि क्या इस वक्त की जो एक सवाल ये है, ऑटोक्रेटिक इकोनॉमिक पॉलिसीज, डू यू थिंक कि इस वक्त हमारी आर्मी भी इन्वॉल्व हो गई, तो कोई भी सियासी हुकूमत आइंदा मुल्क में आती नज़र नहीं आ रही, तो कैसे ये ऑटोक्रेटिक इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में क्विकली हमें थोड़ा सा बता दें।
अगर आप पिछले 30 साल को देखें तो हमारी पॉलिसीज में कोई तब्दीली नहीं आई है। हम बुनियादी बात यह है कि इम्पोर्ट ज्यादा करते हैं एक्सपोर्ट से, हुकूमत अपना खर्चा ज्यादा करती है आमदनी से, और दोनों खसारे जो है हम कर्जे लेके पूरे करते हैं। पिछले 30 साल में हर किस्म की हुकूमत आई है, फौजी भी आए, इलेक्टेड भी आए, इस पार्टी की भी आई, उस पार्टी की भी आई, लेकिन पॉलिसी बिल्कुल यकसानियत है, आमदनी से ज्यादा खर्च करो, डॉलर है नहीं लेकिन महंगी से महंगी चीज मंगवाओ, कर्जे की हो लेकिन हम आसाइश हम इस्तेमाल करेंगे, और वो सारा जो है वो कर्जों से पूरा करेंगे। तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी हुकूमत है, माशी हवाले से एज अ सिटीजन को मैं चाहूंगा कि जमहूरियत हो, और जमहूरियत के लिए लड़ेंगे भी, हम लड़े हैं, सड़क पे पत्थर भी मारे अपने स्टूडेंट डेज में ज़ियाउल्लाह के खिलाफ, लेकिन माशी तौर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता किस किस्म की हुकूमत आती है, क्योंकि इन सब का अंदाजा ये होता है कि कर्जे लेके हुकूमत मईशत चलाएंगे।
सही। क्या एडवाइस करेंगे, कोई हल नजर आ रहा है, ये जो अब आर्मी इन्वॉल्व हुई है तो कोई क्या कल कैसा नजर आ रहा है, और पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचने के लिए क्या करना होगा?
डिफॉल्ट तो हम कर चुके हैं, बैंकरप्ट तो हम हो चुके हैं, ये तो समझ लें वो जो लिपा लगाते हैं मिट्टी के घर पे, ये हम कर रहे हैं। जब आप बैंकरप्सी की डेफिनेशन ये है कि अगर आप कर्जा ले और कर्जा वापस ना कर सके तो आप बैंकरप्ट। पिछले 3-4 साल से तो ये सिचुएशन है कि हम कर्जा लेते हैं सिर्फ पुराना कर्जा वापस देने के लिए, हम उस लिहाज से बैंकरप्ट हो चुके हैं, उसको आप बैंकरप्सी कहें, डिफॉल्ट कहें, कुछ और कहें, लेकिन
रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए।
ये सब पिछले 30 साल खास तौर पे जनरल मुशर्रफ के बाद जो हुकूमतें आई हैं, जनरल मुशर्रफ इंक्लूडेड, सब डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, डायरेक्ट। क्योंकि देखिए 2003 तक हम हर $100 के एक्सपोर्ट पे 125-130 डॉलर की इंपोर्ट थी, $100 के अगेंस्ट, यानी 25-30% खसारा था। अब हर $100 के एक्सपोर्ट पे $250 इंपोर्ट है, जो 25% खसारा था वो 125% खसारा हो गया। इसकी जिम्मेदारी तो बराह रास्त मुशर्रफ और शौकत अजीज को जाती है, जो आने वाली हुकूमत तब्दील नहीं कर पाई, ये तो बहुत वाजे है। ये आदाद और शुमार बोलते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, کوئی اور اس سے اگر اتفاق نہیں کرتا جا کے اعداد و شمار دیکھ لے ان کو خود ہی سمجھ آ جائے گی.
ویری سیڈ سر, ویری سیڈ. کیسے کنکلوڈ کریں گے آج کے پروگرام کو؟ کوئی حوصلہ افزا کہیں سے کوئی خبر آ سکتی ہے جو
پاکستان ایک امیر ملک ہے ساحل کے حوالے سے, لوگ قابلیت بھی ہے اس ملک میں, ہیومن ریسورس ہے, محنت کرتے ہیں. ہم ایک ایسا ملک بن سکتے ہیں جس میں سنگل ڈیجٹ امپلائمنٹ ہو اور سنگل ڈیجٹ غربت ہو, یہ ممکن ہے. یہ مطلب 20 سال کے عرصے میں ہم یہ چیز حاصل کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے دو چیز بہت ضروری ہے, جو حکومت کا خسارہ ہے اور جو امپورٹ ایکسپورٹ کا خسارہ ہے, اس کو ہمیں بیلنس کرنا پڑے گا. ایک حکومت کا خسارہ ختم کرنے کے لیے یا تو آپ ریونیو بڑھائیں یا اخراجات کم کریں. سارا زور ریونیو بڑھانے پہ ہے, لوگوں کو اسکویز کیا جا رہا ہے, انڈسٹری کو اسکویز کیا جا رہا ہے, اور جیسے جیسے یہ ریونیو بڑھانے کی کوشش کرتی ہے معیشت سکھڑتی جا رہی ہے, کئی انڈسٹری بند ہو گئی ہے اسی وجہ سے, تو گنجائش نہیں ہے ریونیو بڑھانے کی. ایکسپینڈیچر کم کرنا پڑے گا. 40 سے زیادہ منسٹریز ہیں اسلام آباد میں, 20 تو کم سے کم بند کرنے کی ضرورت ہے, اور بند کی جا سکتی ہے فضول کی منسٹریز ہیں. ایک منسٹری اب حیرت ہوگی آپ کے سننے والوں کو بھی, ایک منسٹری ہے جس جو ہے ڈویژن فار نیشنل ہارمونی. اب نیشنل ہارمونی کے لیے ایک منسٹری بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح اور بھی ہیں مزاخیز باتیں, لیکن مزاخیز اس لیے نہیں ہے
کہ وہ کہاوت ہے نا کہ کبڑے کی کمر میں ٹانگ پڑی اور اس کا کبھ نکل گیا. آصف منیر صاحب ظاہر دکھنے میں مارشاء اللہ نظر نہیں آ رہا, مگر یہ جو اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے جتنے لوگ نظر آ رہے ہیں, ڈو یو تھنک کہ کوئی چانس ہے کہ چیزیں صحیح سمت میں چلی جائیں؟ اور کیونکہ فوج کی بھی اسی ملک کی حفاظت کریں گے تو ان کی بھی زندگی اور تنخواہیں لگی ہوئی ہیں, تو ڈو یو تھنک کہ کوئی چانس ہے کہ محاسبہ ہو سکے اب اور کوئی سیدھی سمت مل سکے؟
میں نے کہا کہ یہ امکانات تو ہے, جو اگر ہم اپنے اخراجات پہ ایک کنٹرول کریں, جو فضول کے منسٹریز ہیں یہ بند کریں. ڈیفینس میں بھی گنجائش ہے بہت, جو غیر جنگ سے جس کا تعلق نہیں ہے ڈیفینس ایکسپینڈیچر کا, وہاں کمی کی گنجائش ہے, بہت زیادہ گنجائش ہے اگر ہم یہ کر لیں. امپورٹس جو غیر ضروری, بہت ساری امپورٹس ہیں جو ہم اپنی پالیسی بدل کے امپورٹ کو بھی کم کر سکتے ہیں, یہ ہم کریں تو. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کون آگے ہے کون کس کے پیچھے ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کوئی نظر نہیں آ رہا ہے ہمیں اس سمت میں کوئی اقدام.
ملاقات ہوئی جناب آصف منیر صاحب, آپ کی ملاقات ہوئی جناب آصف منیر صاحب سے؟ ڈیڈ یو ایور گیو یور سجیشن؟
میں بہت چھوٹا آدمی ہوں, وہ بڑے آدمی ملتے ہیں جا کے, میں تو میری کوئی ملاقات.
آپ ہمارا سرمایہ ہیں سر, آپ ہمارا سرمایہ ہیں. Any message for our listeners and viewers?
I wish کہ میں بہت کچھ کہہ سکتا. I think آپ کے listeners اور viewers اگر message کرنے لگے social media پہ کہ یہ جو حکومت کے اخراجات ہیں, non development expenditure جس میں non combat defense expenditure شامل ہے, اس میں کمی کی جائے, غیر ضروری امپورٹس پہ بین لگایا جائے تاکہ ہم اتنا ہی امپورٹ کریں جتنے ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, تو اس سے بہت جو امیر طبقہ ہے اس ملک کا اس کی لائف سٹائل میں کمی آئے گی اور اس کو تکلیف ہوگی. لیکن اس وقت جو 80-90% لوگ تکلیف اٹھا رہے ہیں, اس سے ہم بچ نکلیں گے
انشاءاللہ. جناب کیسر بنگالی صاحب سے میں نے بات کرائی, میری کوشش ہوگی سر دوبارہ بھی موقع ضرور دیجیے گا تاکہ ہم آپ سے بات کر سکیں. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. اللہ کرے کہ ٹوگیدر وی کین برنگ اے چینج, آمین. مگر ہمیں اس میں اپنی انا کو ایک سائڈ پہ رکھنا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ میرے ملک کا حامی و ناصر رہے, آمین. خدا.
یو آر واچنگ ای آواز ٹی وی, وائس آف کمیونٹی. یو آر لسننگ ٹو WTOR 770 AM, یانگسٹاؤن ٹورانٹو.
टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स LEDs और होम अप्लायंसेस की हॉटेस्ट और ब्रांडेड रेंज के साथ 0% फाइनेंस गारंटी ऑन लोएस्ट प्राइसेस और फ्री डिलीवरी इन GTA. तो इंतजार कैसा, अभी विजिट करें टेली टाइम ब्रैम्पटन 280 रदरफोर्ड रोड या स्प्रिंगडेल स्क्वायर शॉपिंग सेंटर या इटोबिको 1770 एल्बियन रोड या 9909 मार्कम रोड. मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9054551666. टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स.
रियल एस्टेट में नए एजेंट्स की कामयाबी की जमानत.
वेलकम टू एग्जीक्यूटिव होम्स रियलिटी. 150 से 2 लाख सालाना कमीशन.
Buyer and seller leads, VIP access to pre-construction projects, one-on-one sales, marketing and mentorship, state-of-the-art modern office, private rooms,
in-house mortgage lawyers team,
investment opportunities. So phir der kaisi, aaiye join kijiye.
Executive Homes Reality.
905-890-1300. Visit kijiye ehrb.ca.
करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ. सब पे करम एक सा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ.
करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही तुझसे दुआ मांगता हूँ.
ये नफरत की आग न गुलश روشن جلا دے جو اس آگ کو میرے مولا بجھا دے میں ایسے کرم کی ہوا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
سامعین کرام، ٹورانٹو اور گرد و نواح کے علاقوں میں اب ٹائم ہو جاتا ہے مغرب کی نماز کا، تو آئیے سنتے ہیں مغرب کی اذان.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ.
یو آر لسننگ ٹو WTOR 770 AM، Youngstown، Toronto.
WTOR, Youngstown, Toronto, now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.
आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 770 AM। हमारे प्रोग्राम को टोरंटो में सुनने के लिए डायल कीजिए 647-872-4900, मॉन्ट्रियल 514-907-6288। इसके अलावा कैलगरी, वैंकूवर, एडमिंटन और रिजाना के नंबर्स आप eawaz.com की वेबसाइट पर जाके हासिल कर सकते हैं। हमारी लाइव 24 घंटे की नशियात के लिए विजिट कीजिए eawaz.com। लाइक करें फेसबुक पेज eawaz, डाउनलोड करें फ्री eawaz ऑफिशियल ऐप। Radio 770 AM, Voice of Community. For more details, visit eawaz.com.
Baba! सुने हैं बुरे काम को मैं करता रहा हूँ। रहमान है तू रहम करेगा मेरे मौला,
रहमान है तू रहम करेगा मेरे मौला,
तुझ पर ही मुझे नाज है बंदा मैं तेरा हूँ। धोते रहे आदम,
दामन को तो अश्कों ही से धोते रहे आदम,
आदम की खता को नहीं अल्लाह ने बख्शा,
आदम की खता को नहीं अल्लाह ने बख्शा,
रहते थे परेशान के फिर याद ये आया,
रहते थे परेशान के फिर याद ये आया,
है अर्श के कलमे में लिखा नाम मोहम्मद,
है अर्श के कलमे में लिखा नाम मोहम्मद,
ये नाम तो अल्लाह को महबूब है बेहद,
ये नाम तो
फिर हजरत आदम ने दुआओं में पुकारा,
फिर हजरत आदम ने दुआओं में पुकारा,
है वास्ता उस नाम का जो है तुझे प्यारा,
है वास्ता उस नाम का जो है तुझे प्यारा,
ये सुनते ही दरियाए करम जोश में आया,
ये सुनते ही दरियाए करम जोश में आया,
अल्लाह ने आदम को वही बख्श दिया था,
अल्लाह ने आदम को वही बख्श दिया था,
आदम की खता माफ हुई धूम मची थी,
आदम की खता माफ हुई धूम मची थी,
हर सिमत कमाल एक सदा गूंज रही थी,
मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा तौबा।
जिस नाम पे मौला मेरे मौला, जिस नाम पे तौबा कर दिया तूने सहारा,
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 मौला उसी महबूब की उम्मत ने पुकारा,
मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा तौबा।
जो खून में डूबे बहत्तर है उन लिबासों का,
जो खून में डूबे बहत्तर है उन लिबासों का,
जो खून में डूबे बहत्तर है उन लिबासों का,
जो खून में डूबे बहत्तर है उन लिबासों का,
अता हूँ सदका मुझे करबला के प्यासों का,
मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा तौबा
मेरी तौबा। जिसने तुझे देखा है उसी नैन का सदका,
जो अर्श बिचू में उस नालैन का सदका,
जो अर्श बिचू में उस नालैन का सदका,
बू बकर उमर हजरत उस्मान अली का,
बू बकर उमर हजरत उस्मान अली का,
दे मौला मुझे दे रहो हसनैन का सदका,
मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा तौबा।
गुनाहगार का दामन न धो सके दरिया,
गुनाहगार का दामन न धो सके दरिया,
तेरे करम की फकत एक बूंद काफी है,
मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा तौबा।
फरमाते रहे सबसे यही नबियों के सरवर,
फरमाते रहे सबसे यही नबियों के सरवर,
तौबा के हसी फूल सजाए रहो लब पर,
तौबा के हसी फूल सजाए रहो लब पर,
बू बकर उमर फौली उस्मान अली है, तौबा को समझता है जो बंदा वो वली है,
तौबा को समझता है जो बंदा वो वली है,
ये बात महसनैन ने फरमाया है अक्सर,
ये बात महसनैन ने फरमाया है अक्सर,
तौबा से करम होता है अल्लाह का सब पर,
तौबा से करम होता है अल्लाह का सब पर,
ये गौस और
خواجہ کہے گنج شکر بھی
یہ بات اور خواجہ کہے گنج شکر بھی
توبہ وہی مقبول ہوئی دل سے جو کر لی
توبہ وہی مقبول ہوئی دل سے جو کر لی
کہتے ہیں قلندر یہی نورانی غازی
کہتے ہیں قلندر یہی نورانی غازی
اللہ کے نزدیک ہے سجدے میں نمازی
اللہ کے نزدیک ہے سجدے میں نمازی
جو توبہ کر کے کہا مولا بد نصیب ہوں میں
جو توبہ کر کے کہا مولا بد نصیب ہوں میں
سدائے آئی کے شہرت سے بھی قریب ہوں میں
میری توبہ توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ توبہ
توبہ میں کروں کعبے کی چوکٹ سے لپٹ کر
توبہ میں کروں کعبے کی چوکٹ سے لپٹ کر
لپٹ کر
توبہ میں کروں کعبے کی چوکٹ سے لپٹ کر
توفیق عطا کر کے میں گردش کا ہوں مارا
میری توبہ توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ توبہ
مولا مل سرکار کی معراج کا صدقہ
مولا مل سرکار کی معراج کا صدقہ
مولا صدقہ
مولا مل سرکار کی معراج کا صدقہ
جو سر پہ شفاعت کا ہے استاد کا صدقہ
میری توبہ توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ توبہ
میری توبہ میرے خدا مل خاک در رسول مجھے
میرے خدا مل خاک در رسول مجھے
میرے خدا مل خاک تن کے غلاموں میں کر قبول مجھے
میری توبہ توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ توبہ
میری توبہ کمال آقا کو حق نے رحمت عالم رحمتوں والا
گناہ گاروں کا کیا ہوتا رحمتوں والا گناہ گاروں کا کیا ہوتا نہ آتا رحمتوں والا گناہ گاروں کا کیا ہوتا
کریم تو ہے کرم کی ہمیں ہو بھی عطا
کریم تو ہے کرم کی ہمیں ہو بھی عطا
کریم تو ہے کرم کی ہمیں ہو بھی عطا
کریم تو ہے کرم کی ہمیں ہو بھی عطا
نبی کے نام پہ تو سب کو بخش دے مولا
میری توبہ
تلک کرے توبہ کے لے کے جائے گا جنت تلک درے توبہ قبول کر لے یہ توبہ کو اے رحیم و کریم کمال غوث پہ ناصر پہ ہو عطا
میری توبہ توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ توبہ
توبہ
یو آر لسننگ ٹو WTOR 770 AM یانگسٹاؤن ٹورانٹو
نان کباب ماڈرن افغانی کچن لذیذ افغانی گریل کباب، چپلی کباب، چوپان کباب، لیم شینک، چکن قورما پلیٹ، فیملی پلیٹر، کباب ریپ، فرائز، منٹو، بولانی، فیرنی اور سب کے لیے بہت سے مزیدار کھانے۔ اب آپ کے شہر میں سے ساگا میں ایک اور نئی لوکیشن کے ساتھ 5042 سیٹلائٹ ڈرائیو، یونٹ F3، مسز ساگا۔ For orders and reservations, visit nankebab.ca. قرضے سے نجات کے لیے ایک ہی نام، محمد صدیق، آل دا سولوشن، پرسکون زندگی اور کریڈٹرز کی کال سے چھٹکارا۔
محمد صدیق آل ڈیٹ سولوشن بینک رپسی انسالوینسی کنسالیڈیشن کرتے ہیں اپ ٹو 80%۔ محمد صدیق آپ کے لیے کام کرتے ہیں، پرسکون زندگی، اچھی صحت اور لمبی عمر کی ضامن۔ اپنی زندگی کو پرسکون کرنے کے لیے، قرضوں سے پاک کرنے کے لیے رابطہ کیجیے محمد صدیق 416-671-0577۔
پائی سستا لالا، انج کر تو 6 دی بجائے 5 لے لا۔ اوہ سرلا بہن جی، کینیڈا آ گئے تسی، ایتھے سبزیاں پیچھے بارگین کرن دی لوڑ نہیں، کیونکہ ایشین فوڈ سینٹر تے ودیا فریش گروسری، فروٹس، دالاں، سبزیاں سب کچھ بہت کٹ قیمت وچ ملدا۔
اے جی ایشین فوڈ سینٹر، انڈو کینیڈین گروسریز، پھل فروٹ، دالاں، سبزیاں دی ون سٹاپ شاپ۔ نالے ساڈے کول انڈیا والے بھانڈے، پلیٹاں، باٹیاں سب کچھ ملدا ہے۔ ساڈی ساریاں ہی لوکیشنز تے سونیاں سونیاں رکھڑیاں دی بے شمار ویرائٹی وی ہے۔ ایشین فوڈ سینٹر دیاں ڈیریو وچ 9 لوکیشنز وچوں جتھے مرضی آ جاؤ۔
کہیں مارگیج نہیں مل رہی، جھٹ پٹ مارگیج دلا کے ساری مشکل کر دیں گی آسان۔ 11 سال سے زیادہ تجربہ اور ایک بھروسہ مند نام۔ ہر قسم کی ریزیڈینشیل یا کمرشل مارگیج کے لیے مارگیج الائنس کی جیسمین پرمار سے رابطہ کریں۔ ری فائنینسنگ آپشنز، رینیول آپشنز، مارگیج ڈیفیکلٹیز، ڈاؤن پیمنٹ ایشوز، سیلف امپلائڈ، پرائیویٹ فنڈز، سیکنڈ مارگیج کے لیے کانٹیکٹ کریں موسٹ ٹرسٹ وردی جیسمین پرمار سے۔ نمبر ٹو کال 647-923-5659 لائسنس نمبر 10530۔
عدنان الوی، پریزیڈنٹ لائف ٹائم گروپ۔ عدنان الوی کو کون نہیں جانتا؟ آپ پچھلے 15 سالوں سے اپنی کمیونٹی کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح اپنی انکم اور اپنی ویلتھ کو انکریز کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے لیے ہمیشہ یونیک اور انوویٹو انویسٹمنٹ آئیڈیاز لے کر آتے ہیں۔ اگر آپ آج کی بدلتی ہوئی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ سے پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پیسوں کو زیادہ سیکیور رکھتے ہوئے میکسیمم پروفٹ بنائیں، تو آج ہی عدنان الوی سے رابطہ کریں۔
پتھر کے سنم، تجھے ہم نے محبت
मोहब्बत का खुदा जाना पत्थर के सनम था ये बढ़ जाएंगी तन्हाइयां जब रातों की रास्ता हमें दिखलाएगी शम्मे वफा उन हाथों की ठोकर लगी तब पहचाना पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना पत्थर के सनम काश के होती खबर तूने किसे ठुकराया है शीशा नहीं सावर नहीं मंदिर सा एक दिल ढाया है पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना बड़ी भूल हुई अरे हमने ये क्या समझा ये क्या जाना पत्थर के सनम
दुनिया की इज्जत हमको प्यारी, मुट्ठी में किस्मत है अपनी, हमको मेहनत प्यारी। मिट्टी की कीमत का जग में कोई रतन नहीं है, जिल्लत के जीवन से बदतर कोई कफन नहीं है। देश का हर दीवाना अपने प्राण चीर कर बोला, बलिदानों के खून से अपना रंग लो बसंती चोला। अब के हमने जानी है, सबने मन में ठानी है, हमलावरों की खत्म कहानी, खत्म कहानी कर देंगे अब के बरस। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, अब के बरस। सुख सपनों के साथ हजारों दुख भी तूने झेले, हंसी खुशी से भीगे फागुन अब तक कभी ना खेले। चारों ओर हमारे बिखरे बारूदी अफसाने, जलती जाती शम्मा जलते जाते हैं परवाने, फिर भी हम जिंदा हैं अपने बलिदानों के बल पर। हर शहीद फरमान दे गया सीमा पर जल जल कर, यारो टूट भले ही जाना लेकिन कभी न झुकना, कदम कदम पर मौत मिलेगी फिर भी तुम ना रुकना। बहुत सहेलियां अब न सहेंगे, सीने भड़क उठे हैं, नस नस में बिजली जागी है, बाजू भड़क उठे हैं। सिंहासन की खैर करो जुल्मों के ठेकेदारों, देश के बेटे जाग उठे तुम अपनी मौत निहारो। अंगारों का जश्न बनेगा, हर दुश्मन भागेगा। हमने कसम निभानी है, देनी हर कुर्बानी है, हमने कसम निभानी है, देनी हर कुर्बानी है। अपने सरों की अंतिम निशानी धर देंगे अब के बरस। अब के बरस तुझे धरती किरानी कर देंगे, अब के बरस
तुझे।